अब चतुर्थी के अर्थ को हम लोग पढ़ेंगे। आश्रयो बधि उद्देश्य, इसमें आश्रय हो गया, अवधि हो गई, अब उद्देश्य जो है उसके बारे में पढ़ना है। और उद्देश्य किसका अर्थ है, किस विभक्ति का, तो कहते हैं उद्देश्य चतुर्थी अर्थ है। चतुर्थी विभक्ति का अर्थ उद्देश्य है। चतुर्थी किस सूत्र से होती है, तो संप्रदान है चतुर्थी, और संप्रदान किसको कहते हैं, तो उसके लिए सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रेति स्व संप्रदानम। इसमें दो शब्द ऐसे हैं कर्मणा यम अभिप्रेति स्व संप्रदानम में जो व्याख्या है, एक तो कर्मणा और दूसरा यम अभिप्रेति। इसलिए भूषणकार कर्मणा का अर्थ करते हैं कि करण भूते न, कर्मणा का अर्थ कर्म नहीं करना है, कर्म के द्वारा नहीं बल्कि करण के द्वारा, ऐसा अर्थ करते हैं। और यम अभिप्रेति का अर्थ हुआ यम इप्सति, माने जिसको जिससे संबंध करना चाहता है, इप्सति माने संबंधुम इच्छति, तो यम संबंधुम इच्छति, ये अर्थ हो गया यम अभिप्रेति का। तो करण भूत कर्म के द्वारा जिसको संबंध के लिए करना, जिससे करण भूत कर्म के द्वारा जिसका संबंध इच्छित होता है उस कारक को संप्रदान संज्ञा होती है। तो इस तरह से उद्देश्य जो होगा वही उसी की संप्रदान संज्ञा होगी, और संप्रदान का अर्थ जो है, चतुर्थी का अर्थ जो है वह उद्देश्य होगा। इदम एव शेषित्वम, ये दो नंबर में मैं पूछता है कि शेषित्व क्या है, तो शेषित्वम उद्देश्यत्वम, शेषित्व जो है वही उसको किसको कहते हैं, तो उद्देश्य को शेषित्व कहा जाता है। और यह शेषित्व शब्द जो है मीमांसकों का दिया हुआ है, मीमांसकों ने उद्देश्य को शेषित्व कहा है। यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त बात जो है भूषणकार ने बताई हुई है, जो कि इंटरव्यू सब में भी बहुत पूछा जाता है, उसको आप लोग समझ लीजिए। ये है कि रजकाय वस्त्रम ददाति, यह प्रयोग बनेगा, अथवा रजकस्य वस्त्रम ददाति, यह प्रयोग बनेगा। यहाँ समस्या क्या है उसको समझिए कि ददाति मतलब होता है दान देना, तो दान देना किसको कहते हैं, तो जिसको देने के बाद वापस न लिया जाए उसको का, उसके लिए ददाति का प्रयोग होता है। लेकिन धोबी को जो हम वस्त्र देते हैं वह तो वापस फिर उससे दोबारा धोने के बाद वापस ले लेते हैं, तो वहाँ पर रजक को संप्रदान माना जाए कि नहीं, रजक को संप्रदान संज्ञा होगी कि नहीं, अगर संप्रदान संज्ञा होगी रजक को तो रजकाय वस्त्रम ददाति प्रयोग होगा, और अगर संप्रदान संज्ञा नहीं होगी तो वस्त्र के साथ धोबी का संबंध जुड़ता है, तो संबंध जुड़ने के कारण रजक में षष्ठी होगी, तो रजकस्य वस्त्रम ददाति। तो इस तरह से इंटरव्यू में प्रश्न किया जाता है कि रजकस्य वस्त्रम ददाति साधु है, अथवा रजकाय वस्त्रम ददाति साधु है, कौन सा जो है सही है। तो इसका उत्तर आप लोग पहले समझ लीजिए कि भाष्यकार की के अनुसार, पतंजलि के अनुसार रजकाय वस्त्रम ददाति ये सही है, और वृत्तिकार के अनुसार, वृत्तिकार कहते हैं ये काशिकाकार जो है ना, बामन जयादित्य, इनको वृत्तिकार कहा जाता है, तो काशिकाकार के अनुसार रजकस्य वस्त्रम ददाति जो है यह साधु है। अब ये कैसे साधु है और असाधु है इसको समझना है, तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि दोनों ही साधु है, लेकिन अलग अलग मत में, भाष्यकार के मत में रजकाय वस्त्रम ददाति होगा, और वृत्तिकार के मत में जो है रजकस्य वस्त्रम ददाति होगा। अब इसका विवेचन सुन लीजिए, आपकी पुस्तक में कहा गया कि रजकाय वस्त्रम ददाति इत्यपि खंडिकोपाध्याय शिष्याय चपेताम ददाति इति भाष्योदाहरणात् इष्टमेव, माने भाष्य में एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि खंडिकोपाध्याय शिष्याय चपेताम ददाति, माने खंडिकोपाध्याय नाम के जो गुरुजी थे वो शिष्य को चपेटा देते हैं, चपेटा देते हैं माने थप्पड़ मारते हैं। यहाँ पर ददाति प्रयोग है, और ददाति में शिष्याय में संप्रदान संज्ञा करके चतुर्थी की गई है। अब बताइए कि थप्पड़ देने में दान देने वाली तो कोई बात है नहीं, फिर भी भाष्यकार ने शिष्याय चपेताम ददाति, खंडिकोपाध्याय शिष्याय चपेताम ददाति ऐसा उदाहरण जो प्रस्तुत किया है, इससे ये सिद्ध होता है कि दा धातु का अगर प्रयोग हो, चाहे वहाँ पर दान वाला सेंस हो या न हो, दा धातु का प्रयोग अगर हुआ है तो वहाँ पर संपदान संज्ञा हो जाएगी। तो जो उद्देश्य होगा उसकी संपदान संज्ञा होगी, चाहे दिया जाए, दे करके वापस लिया जाए या वापस न लिया जाए। तो इस तरह से भाष्यकार के मत में दोनों ही प्रयोग साधु हैं। रजकाय वस्त्रम ददाति भी सही है और रजकस्य वस्त्रम ददाति भी सही है। यदि संप्रदानत्व की विवक्षा करेंगे तो रजकाय वस्त्रम ददाति होगा, यदि संबंध की विवक्षा करेंगे तो रजकस्य वस्त्रम ददाति होगा। ये भाष्यकार के मत में दोनों ही सही है, लेकिन वृत्तिकार के मत में जो है ऐसा नहीं है। वृत्तिकार कहते हैं कि सम्यक प्रदीयते यस्मै तत् संप्रदानम्, सम्यक रूप से जिसको दिया जाए उसको हम संप्रदान कहते हैं। अब सम्यक रूप से देना क्या होता है कि वही कि जिसको देने के बाद वापस न लिया जाए, वही है सम्यक प्रदीयते। तो सम्यक प्रदान जिसको किया जाए वह संप्रदान होता है। इस तरह से अन्वर्थ संज्ञा मानते हैं वृत्तिकार। अन्वर्थ संज्ञा मतलब जैसी संज्ञा है, जैसा नाम है, वैसा ही उसका अर्थ है, तो उसको हम अन्वर्थ संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है कमल लोचन, तो सचमुच जो है उसका लोचन आँख जो है अगर कमल की तरह है तो कमल लोचन संज्ञा जो होगी वह अन्वर्थ संज्ञा कहलाएगी। यहाँ पर जो संप्रदान संज्ञा है इसमें है संप्रदान, अर्थात सम्यक रूप से जहाँ प्रदान किया जाए उसको हम संप्रदान कहते हैं। तो यह अन्वर्थ संज्ञा मानते हैं वृत्तिकार, और अन्वर्थ संज्ञा मान लेने से क्या होगा कि रजकाय वस्त्रम ददाति नहीं होगा, क्योंकि वहाँ दान तो है किंतु संप्रदान नहीं है, इसीलिए रजकस्य वस्त्रम ददाति ही जो है वह उचित है, ऐसा वृत्तिकार का कहना है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि भाष्यकार के मत में दोनों सही है। रजकस्य वस्त्रम ददाति होगा संबंध की विवक्षा में, रजक और वस्त्र के बीच में संबंध की विवक्षा कर देंगे तो रजकस्य वस्त्रम ददाति होगा, और अगर संप्रदानत्व की विवक्षा करेंगे रजक में तो रजकाय वस्त्रम ददाति होगा भाष्यकार के मत में। किंतु वृत्तिकार जो है संप्रदान को अन्वर्थ संज्ञा मानते हैं, और अन्वर्थ संज्ञा मानने के कारण ब्राह्मणाय धनम ददाति तो होगा लेकिन रजकाय वस्त्रम ददाति नहीं होगा, रजकस्य वस्त्रम ददाति ही होगा। इस तरह से एक इंटरव्यू वाली बात को हम लोगों ने सीखा यहाँ पर। अब आगे जो है संप्रदान के भेद को देखते हैं। संप्रदान के भी तीन भेद होते हैं, वाक्यपदीय कार ने संप्रदान के तीन भेदों को बताया है। वो तीन भेद कौन हैं? तो एक होता है अनिराकर्ता संप्रदान, दूसरा होता है प्रेरयिता संप्रदान, और तीसरा होता है अनुमंता संप्रदान। फिर से दोबारा सुन लें, अनिराकर्ता संप्रदान, प्रेरयिता संप्रदान और अनुमंता संप्रदान। इसका इसके शब्द पर आप गौर करेंगे ना तो आप उसको समझ में आ जाएगा कि ये संप्रदान के भेद क्या हैं। पहला है अनिराकर्ता संप्रदान, यानी ऐसा संप्रदान जो निराकरण न करे, अर्थात जो मना न करे कि मुझे मत दो, इस तरह का जो संप्रदान होता है उसको कहते हैं अनिराकर्ता संप्रदान। दूसरा होता है प्रेरयिता संप्रदान, ऐसा संप्रदान जो कि दान देने के लिए प्रेरित करे उसको कहते हैं प्रेरयिता संप्रदान। और तीसरा हो गया अनुमंता संप्रदान, माने अनुमति देने वाला संप्रदान। कोई कहे कि मैं आपको देना चाहता हूँ तो संप्रदान कहे क्या कि ठीक है आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए। इस तरह से जो अनुमति देने वाला संप्रदान होता है वह हो गया अनुमंता संप्रदान। इसी को वाक्यपदी की कारिका में कहा गया कि अनिराकरणात् कर्तुः त्यागांगम कर्मनेप्सितम प्रेरणानुमतिभ्याम च लभते संप्रदानताम, कि इस तरह से अनिराकरण करने से, प्रेरणा करने से और अनुमति देने से संप्रदान जो है वह तीन प्रकार का होता है। अब इसका उदाहरण देखिए, पहला जो है अनिराकर्ता संप्रदान, उसका उदाहरण है सूर्याय अर्घ्यम ददाति, सूर्य को अर्घ्य देता है। अब यहाँ पर जो है जब हम लोग संध्योपासन करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देते हैं उस समय में आप गौर करिए कि सूर्य जो है वह न अत्र सूर्यः प्रार्थयते, सूर्यः न अनुमन्यते, सूर्यः न निराकरोति। वहाँ पर सूर्य भगवान जो हैं ये मति अर्घ्य देने के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, ये नहीं कहते कि मुझे अर्घ्य दो, न अनुमन्यते अनुमति भी नहीं देते हैं कि ठीक है आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, और न निराकरोति और निराकरण भी नहीं करते हैं, माने मना भी नहीं करते हैं। इस तरह से जहाँ पर संप्रदान जो है देने के लिए प्रार्थना न करे, संप्रदान जो है देने के लिए अनुमति न दे, और संप्रदान जो है देने के लिए निराकरण नहीं करे, मना न करे, ऐसा जो संप्रदान होता है वह पहला भेद है अनिराकर्ता संप्रदान, जिसका उदाहरण है सूर्याय अर्घ्यम दधाति। इसमें सूर्याय जो है वह अनिराकर्ता संप्रदान है। दूसरा जो प्रेरक प्रेरयिता संप्रदान जो है उसका उदाहरण हो गया विप्राय गांग दधाति। इसमें विप्र जो है वह प्रेरित करता है कि मुझे आप गाय दीजिए, और फिर दाता जो है वह विप्र को गाय देता है। तो यहाँ पर प्रेरयिता संप्रदान जो है वो विप्राय गांग दधाति में विप्राय है। और तीसरा जो भेद है अनुमंता संप्रदान, उसका उदाहरण है उपाध्यायाय गाम ददाति। उपाध्याय कहते हैं गुरु को, माने गुरु जी को गाय देता है, उपाध्यायाय गाम ददाति। यहाँ पर क्या है कि शिष्य कहता है कि गुरु जी मैं आपको दक्षिणा में गाय देना चाहता हूँ, और फिर गुरु जो है कहता है कि ठीक है देना चाहते हो गाय को तो दे दो। तो इस तरह से ये अनुमंता संप्रदान जो है ये है उपाध्यायाय गाम ददाति में उपाध्याय। इस तरह से संप्रदान के जो तीन भेद हैं और उदाहरण हैं उसको हम लोगों ने देखा। अब आगे जो है आपको सुवर्थ प्रकरण में एक विशेष बात की चर्चा होगी, वो ये है कि आप थोड़ा गौर करिए, वो जो कारिका थी ना आश्रयो बधिरुद्देश्य संबंध शक्ति रे बाबा, तो हमने आश्रय को पढ़ा, अवधि को पढ़ा और उद्देश्य को पढ़ा। अब उसमें आश्रयो बधिरुद्देश्य संबंध शक्ति रे बाबा, संबंध और शक्ति ये दो अभी अर्थ जो है बाकी रह गए हैं। तो संबंध अर्थ किसका होता है, उसके लिए बताया गया कि शेषे षष्ठी सूत्र से जहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है उसका संबंध अर्थ होता है। अब ये जो षष्ठी विभक्ति जो है ये दो प्रकार की षष्ठी होती है, एक होती है शेष षष्ठी और एक होती है कारक षष्ठी। तो जहाँ पर शेष षष्ठी हो, क्योंकि शेषे षष्ठी में जो शेषे है वो शेषे का अर्थ होता है संबंधे, शेषे षष्ठी माने संबंधे षष्ठी, तो शेषे षष्ठी से जहाँ षष्ठी होगी उसका अर्थ होगा संबंध। और जो कारक षष्ठी होती है उस कारक षष्ठी का अर्थ होता है संबंध नहीं होता, उस कारक षष्ठी का अर्थ होता है शक्ति। शक्ति मतलब जो जो कारक होगा, जैसे कर्म कारक है तो उसमें कर्म शक्ति अर्थ होगा षष्ठी का, अगर अधिकरण कारक होगा तो अधिकरण शक्ति उसका अर्थ होगा षष्ठी का। तो इस तरह से षष्ठी के दो अर्थ, षष्ठी दो प्रकार की हो गई, शेष षष्ठी माने संबंध षष्ठी और कारक षष्ठी। तो शेष षष्ठी जो है उसका संबंध अर्थ है और कारक षष्ठी जो है उसका शक्ति अर्थ है। अब आशयो बधिर उद्देश्य संबंध तक हमने पढ़ लिया, अब शक्ति एवं वा ये जो है इसको एक तरह से तो व्याख्या हमने बता दी कि कारक षष्ठी का अर्थ जो है वह शक्ति होता है। अब इसके दूसरे टाइप से भी व्याख्या है और वो व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो हम चार अर्थ मानते हैं आश्रय अवधि उद्देश्य और संबंध, तो चार अर्थ मानने पर गौरव होता है, इसलिए एक ही अर्थ मान लेते हैं सारी विभक्तियों का, वो अर्थ क्या होगा तो शक्ति अर्थ होगा। तो इस पक्ष में इस तरह से व्याख्या करने से सभी विभक्तियों का अर्थ जो है वह शक्ति हो सकता है। इसी बात को कहने के लिए कारिका में कहा कि शक्ति एव वा, अथवा इन चारों को साइड कर दीजिए और शक्ति को ही अर्थ मान लीजिए। इसको हमने शुरू में आपको संक्षिप्त में बताया था कि शक्ति अर्थ होता है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सब में त्व लगा देना, करता है तो कर्तृत्व, कर्तृत्व शक्ति, कर्म है तो कर्मत्व शक्ति, करण है तो करणत्व शक्ति, संप्रदान है तो संप्रदानत्व शक्ति, अपादान है तो अपादानत्व शक्ति, अधिकरण है तो अधिकरणत्व शक्ति। तो इस तरह से ये जो कारक विभक्तियां हैं, इन सब कारक विभक्तियों की 6 प्रकार के कारक होते हैं और 6 प्रकार की कारक विभक्तियां होती हैं, तो इन सबों का अर्थ जो है वह शक्ति अर्थ होता है, ऐसा भी माना जाता है। अब भाष्यकार ने जो है महाभाष्य में एक श्लोक वार्तिक का प्रयोग किया है, वह वार्तिक क्या है ये लास्ट में उसको हमें देखना है और उसके आधार पर हमें विचार करना है कि सुपांग कर्मादयोप्यर्थाः संख्या चैव तथा तिङ्गाम प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा। अर्थात सुपाम माने सुप विभक्ति जो है उसके बहुत सारे अर्थ हैं, क्या क्या, तो कर्मादयः अपि अर्थाः माने सुप विभक्ति के कर्म आदि अर्थ होते हैं। कर्म आदि मतलब कर्म, कर्ता, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये जो है सुप के अर्थ होते हैं। और संख्या चेव, और संख्या भी सुप का अर्थ होता है, माने एकत्व, द्वित्व, बहुत्व, ये अर्थ भी जो है सुप विभक्ति का होता है। तथा तिङ्गाम, और तिंग विभक्ति जो है तिप्तर जी सब, उसका भी जो है ना ये सब अर्थ होता है, माने कर्म आदि भी अर्थ होते हैं और एकत्व, द्वित्व, बहुत्व आदि संख्या अर्थ भी होते हैं। इसमें कहा कि प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा, कि इसमें दो तरह के नियम बड़े प्रसिद्ध हैं। किसमें? ये जो कर्मादि अर्थ और संख्या अर्थ होता है, इसमें दो तरह के नियम प्रसिद्ध हैं, क्या क्या, एक प्रत्यय नियम है और एक अर्थ नियम है। तो प्रत्यय नियम और अर्थ नियम के आधार पर ये कर्मादि अर्थ भी होते हैं सुप और तिंग के, और संख्या अर्थ भी होते हैं सुप और तिंग के। इस तरह से इस श्लोक वार्तिक में भाष्यकार ने कहा है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसलिए कि सौजस मोद सूत्र से सूर्य भक्ति लाते हैं, उसमें कर्मन द्वितीया आदि देव की ओर द्विवचने के बचने, इन तीनों की एक वाक्यता होती है, और एक वाक्यता होने के बाद जब सुविभक्ति होती है तो इसलिए उसका कर्म भी, कर्म आदि भी अर्थ होगा और द्वित्व एकत्व आदि भी अर्थ होगा। ऐसे ही जब तिप विभक्ति लाते हैं तो उसमें लस्य, तिपतस जी सूत्र और तान्य के वचन, द्विवचन, बहुवचनान्य के सह, इन तीनों की एक वाक्यता होती है, और इन तीनों की एक वाक्यता होने के कारण तिंग का भी जो है कर्मादि अर्थ और संख्या आदि भी अर्थ होता है। तो ये जो हमने सुप के अर्थ के बारे में विचार किया कि आश्रय उपाधि उद्देश्य संबंध शक्ति रेवा, ये तो है ही, इसके साथ साथ इस श्लोक वार्तिक के आधार पर संख्या अर्थ भी जो है सुप विभक्ति के का होता है, ये बात यहाँ पर इन्होंने बताई है। इसमें जो इन्होंने कहा कि दो यहाँ पर दो तरह के नियम होते हैं कर्मादि अर्थ होने में और संख्या आदि अर्थ होने में, एक है प्रत्यय नियम और दूसरा है अर्थ नियम। तो उसका उदाहरण दिया कि तन नियमश्च द्विविधो लभ्यते, नियम दो प्रकार का है, द्वितीया कर्मन एव, तृतीया करने एव, ये जो है ये शब्द नियम है अर्थात ये प्रत्यय नियम है, और कर्मन द्वितीय एव, करने तृतीय एव, ये जो है ये अर्थ नियम है। अर्थात एव शब्द जो है अगर हम कर्म में करण में लगा देंगे तो वह हो जाएगा शब्द नियम, और एव जो है अगर विभक्ति में लगाएंगे कर्मन द्वितीया एव, करने तृतीया एव, तो ये हो जाएगा अर्थ नियम। और इस तरह से इन नियमों के द्वारा सुप विभक्ति का कर्मादि अर्थ और संख्या अर्थ भी जो है वह सिद्ध होता है। इस और लास्ट में कहते हैं कि विभक्तो न लक्षणा, विभक्ति जहाँ हो उसमें लक्षणा नहीं होती है। न्यायिक लोग विभक्ति में भी लक्षणा स्वीकार करते हैं, उसको व्याकरण लोग नहीं मानते हैं। तो इस तरह से आपके भूषण का पाठ यहाँ पर संपन्न होता है। आप लोगों को मेरी ओर से शुभकामना है, आप लोग बढ़िया से तैयारी करें, परीक्षा दें, सफल बनें। बहुत बहुत धन्यवाद।